और देव की इनकी मर्यादा संभाल साधारण जीवों के लिए और कल्याणकारी जीवों के लिए जो कल्याण चाहते हैं, इसे बहुत सी शिक्षाएं उसको समझ करना चाहिए। उसमें जीवों का क्या कर्तव्य है, जीव है क्या चीज, इस सब का विशद रूप से वर्णन किया गया है। श्रीमान शुभानंद ब्रह्मचारी जी संक्षेप में इसके सात तत्वों को आप लोगों के सामने वर्णन करेंगे। इसके बाद में मैं श्री आर शुक्ल इसके संबंध में कुछ आप लोगों के सामने निवेदन करूंगा। आप लोग धैर्य के साथ में सुनेंगे।
माता के उस दुख का निवारण करते हैं।
दुख प्रदान करते। मैं प्रसन्न चेतन के कारण ये मान कर
मैंने पहले कभी ऋषियों को उपदेश दिया था, भैया वही आध्यात्मिक योग है
जो आपको सुनाता
हे मान। इस संसार में आए हुए भी प्रथम जो वर्ष जैसा संघ करता है वैसे ही उसको संगत मिलता है और उसी तरह से बंधन होता है। प्रसंगम अजरम पार्थम आत्मनो भवयो, ये प्रतीक रूप से संघ ये शुद्ध जो पाठ है स्वयं साधु शुक्र को मुख्य द्वार अपात्रता। जब संसार में आदित्य हो जाता है तब बंधन होता है और वही प्रसंग जब साधु संतों के बीच में होता है तो भगवान की चर्चा भगवान की कथाओं के द्वारा संसार में मुक्त हो जाता है। हम लोगों का मन ही बंधन का कारण और मुक्ति का कारण बनता है। जब विधों में अवरक्त होता है, प्रकृति के गुणों में अभिभूत होता है, सब इसके द्वारा बंधन होता है। दुख कष्ट सुख दुख लाभ लाभ जय पराजय मान अपमान जन वजन इसका प्रभाव होता है। और जब भगवान को चित्र लगा देते हैं, उनके नाम रूप गुण लीलाओं में डूब जाता है, मन खुशी में रह जाता है, तो संसार से मुक्त होकर के प्रभु के चौरों में चला जाता है, उनके प्रेम को प्राप्त करता है। इसलिए हे मातृ, इस संसार में रहकर ये सच पुरुषों का सज्जनों का संतों का संग करना चाहिए, यही जीवन का कल्याण कल्याण का मार्ग है और कोई उपाय नहीं। संत पुरुष की सेवा करें और उनका संग करें। माता देवी ने कहा कि संत पुरुष कौन, मैं जैसे पहचानूं कि ये संत है तो उनका संग करना चाहिए और उनका संग करें, इसका लक्षण क्या। तब भगवान कपिल देव ने कहा कि हे मातृ, तितिष्ठ कारुणिका सुहृद सर्वदेशा अजात सत्व सांता साधन सारूषम मई अनंत भावेन भक्तिं कुर्वन्ति यत्तिरं मत्कृते तप्त कर्मानं तत्र सजन बांधव। जो लोग सहिष्णु हैं, समस्त प्रकार की विपत्तियों में जिनके अंदर सहन चलता है, कार्य विकास सबके प्रति करुणा कराया है। सर्वदेहिना समस्त प्राणियों के सुहृद है, बंधु है, और आप शत्रु जीवन में किसी को शत्रु रूप में नहीं माना और नहीं समझा नहीं थे। शांत विषय वासना से रही प्रशांत गंभीर चित्त लेते ये समस्त साधुओं का आभूषण है बाह्य लक्षण और आंतर लक्षण में मई अनंत भावेन भक्ति पूर्वक भगवान के प्रति अनंत भाव से भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। भगवान के लिए प्रभु के लिए जीवन का सब कुछ त्याग कर दिया है, सबकी आसक्ति सब का मोह त्याग कर दिया है और प्रीतम से जीवन के प्रभु का भजन करता है। ऐसे व्यक्ति ही साधु में प्रेते कारण का भी हे मातृ, ऐसे साधु व्यक्ति हैं उन साधुओं का संग करने से सर्व संग दोष रहित है। समस्त प्रकार संग दोष विषय आसक्ति संसार मोह छूट जाता है। इसलिए ऐसे संत पुरुषों का संग सतम चरणा मम संतों के प्रसंग में आज संतों के समाज में जाए भगवान की दिव्यवती कथाएं होती, बड़ी प्रभावशाली कथाएं, उन कथाओं का श्रवण कीर्तन करने से श्रवण करने से मन का जहां भी यह संसार दूर हो जाता है। चोट प्रकार संसार दूर होता है, परम बंधन पाप का सब कुछ दूर चला जाता है। भगवान की कथाओं में प्रकार श्रद्धा, उस कथा के साथ में जब भजन साधन करने लगते हैं तब साधन लगती नहीं, इस प्रकार भजन साधन करते करते भाव भक्ति होती और भाव के साथ भगवान के चरणों में प्रेम लाभ होता है। इसलिए श्रद्धा रति भक्ति रनुक्रमित करें, निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करते करते चित्त भगवान में लग जाता है, प्रकृति के गुणों से निर्मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भजन करते करते क्या होता है कि जरूर आशुपोषण निर्देशन मनो जाता, जितने प्रकार के बंधन है, जितने प्रकार का अनर्थ है, ये समस्त अनर्थ दूर हो जाता है, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। निर्देश जैसा भोजन खाने पर जसराय में जैसे पचाने लग जाते हैं और एक बार भोजन करे तो दो चार घंटा छह घंटे बाद फिर से भूख लगता है, संपूर्ण रूप से हजम हो जाता है। तो एक रोटी खाना भी खाना होता है, भोजन होता है और पेट भर भोजन ही भोजन होता है। जब तक पेट भर भोजन नहीं हो तब तक शरीर की पुष्टि मन की संतुष्टि नहीं होती और बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती। इसी प्रकार भजन साधु में जब पूर्णता आ जाती प्रबल आसक्ति और उत्कंठा के साथ में भजन करने लगते तब भजन की पूर्णता कुछ मात्रा में अनुभव होती। ऐसे समय में यह मात्र भगवान का कुछ अनुभव होता है। जब आसक्ति के साथ में भजन करते, जब भावयुक्त होकर भजन करते उस समय संसार के और किसी भी वस्तु के प्रति प्रिया नहीं होती, एकमात्र प्रभु की सेवा से लग जाते, निरंतर भगवान की सेवा में डूबे रहते। ऐसे समय में भावयुक्त हृदय में प्रभु का कुछ अनुभव होने लगता है। ऐसी स्थिति में मुक्ति भगवान भक्तों को मुक्ति देने पर भी दिए मानव अभिनती बिना सेवरम जना, भक्त लोग प्रभु की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। भगवान भक्तों को सामुख्य भगवान के रूप में बात, सामिप्य भगवान के समीप में बात, भगवान के समान रूप सारुप्य और साक्षी भगवान के समान अपूर्व ऐश्वर्य ऐसे सब प्रदान करते हैं। परंतु भक्त लोग बेशक नहीं चाहते हैं, वे तो चाहते हैं कि प्रभु की सेवा हो जाए। इस प्रकार स्वयं दर्शन अवय अवय भगवान के दिव्य मनोहर रूप का अनुभव करते, उनके स्मरण में स्फूर्ति में और कभी कभी साक्षात उनमें उनके सामने प्रकट होकर के दर्शन भी देते हैं। इस प्रकार भक्तों के भक्ति में प्रभु भगवान एक भगवान भक्तों के सामने आ जाते हैं, उनको दर्शन देते और ऐसे भक्तों को मुक्ति देने पर भी कभी भी प्रिया नहीं करते। वे लोग निरंतर भागवतों का संग करते हैं, संत महापुरुषों का संग करते हैं और भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हुए निरंतर उस सौभाग्य को जयुक्त करते। एक प्रकार से मात्र भगवान की भक्ति करने वाला ही सबसे बड़ा कुशल है और यही भक्ति योग सबसे उत्तम योग है। संसार में लोग मूल कर्म स्वभाव से बंधे हुए विभिन्न प्रकार के, तो उनकी भावना के अनुसार लोग अपने अपने भावना के अनुसार भक्ति को जोड़ देते हैं। इसलिए संसार में देखा जाता है बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि मारण उजागर मंत्र तंत्र की सिद्धि के लिए हिंसा विशेष के लिए प्रभु की भक्ति कर रहे, इधर मंत्र जप कर रहे, भगवान की आराधना कर रहे, भजन कर रहे, उधर मारण उजागर हिंसा विशेष तामसिक भाव से भजन कर रहे। तो ऐसे भक्ति को कहा जाता है तामसिक भक्ति। क्यों ये समस्त फल की सिद्धि के लिए भक्ति कर रहे हैं? इसलिए शांति वाली बहुत से लोग धन दौलत पाने के लिए प्रभु की भक्ति करते हैं। विषय संपत्ति संसार स्वरूप हो ये सब की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना करते हैं, ऐसी भक्ति को राजसिक भक्ति कही जाती है। बहुत से लोग मुक्ति के लिए आराधना करते हैं, हे प्रभु हमें मुक्ति मिल जाए, मुक्ति के लिए भगवान की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, इसको शास्त्रीय भक्ति कही जाती है। और जहां पर केवल प्रभु प्रति के लिए उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा के लिए भक्ति की जाती है वह निर्गुणा भक्ति है, निशुद्धा भक्ति। हे माता लक्ष्मण भक्ति जो उदार ये भक्ति जो जो है निर्गुणा है अपराधित अभैध की भक्ति, इसमें कोई हेतु या कोई कारण नहीं होता है। यथा गंगा महसव अंधुरम, जैसे कि गंगा की धारा हिमालय से चलती हुई समुद्र में जाकर निकलती है, इसी प्रकार भक्तों का चित्र भी ऐसे ही होना चाहिए। समस्त कामना वासनाओं को त्याग कर अपने सुख की अंदाजा को त्याग कर प्रभु प्रति के लिए प्रभु की भक्ति करें और उनकी प्रसन्नता के लिए हो, तब यह शुद्ध भक्ति है, उसके द्वारा जीवन का स्वास्थ्य विलाम होता है। अन्यथा कोई भगवान की पूजा करता है, भगवान को फूल चंदन चढ़ा रहा है और उधर उससे प्राणियों से हिंसा करता है, तो उसकी पूजा ऐसी है कि भगवानी जो होती है माता, ऐसी पूजा जो है राग में भी भगवान के बराबर है। ऐसी पूजा भगवान का विग्रहण नहीं करते न उनकी पूजा है, यह आरंभ मात्र लोग दिखावा मात्र। इसलिए प्राणियों में भगवान सर्वत्र विराजमान है, सबके अंदर है, अपने सबको आदर कर सबके प्रति दया मैत्री करुणा और सुमधर्म सार्थक श्रद्धा, भक्तजनों में मैत्री भाव बंधु भाव और भागवत परम हंस संत महापुरुष मिल जाए तो उनके प्रति आदर श्रद्धा भक्ति है, उनकी सेवा। इस प्रकार धन से दिए भगवान की आराधना करें, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो है इसके वर्षन के अर्थ हे माता। बहुत से लोग ध्यान धारणा समाधि लगाते हैं जो साधना करते और अमृत परिवार परमात्मा को सदा से ध्यान करते हैं और ऐसे युग समाधि के द्वारा चित्त को एकाग्र करके ब्रह्मलोक तक जाते हैं और वहां जाकर के नित्य सिद्धि चमत्कार को प्राप्त करते हैं। अनिमा महिमा महिमा आदि पंच के द्वारा कदापि उनके हृदय में शांति नहीं होती। बहुत से लोग ज्ञान साधना के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी कर लेते हैं परंतु वहां जाकर के निश्चय ब्रह्म में पड़े रहते। इसलिए ये संसार से निकलने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और बहुत से लोग कर्म मार्ग में कर्मयोग का अवलोकन करते हैं परंतु ये मात्र एक संसार में आकर के कर्म करते करते जी चाहते हैं कि कर्म बंधन से निकलने को परंतु निकल नहीं पाता है। यदि जीव कोई सत्कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, निष्पाप इस प्रकार के कर्मों को करते हैं तो अंत में चंद्रलोक तक पहुंचते और अधिक पुण्य हो तो स्वर्गलोक चल जाते, परंतु उस स्वर्ग सुख को और चंद्रलोक में दिव्य सुख को भोगते हुए फिर वहां से निकलते चले आते। और जो व्यक्ति इस संसार में आकर केवल विषयों में चित्त लगाए और भोगों में आसक्त रहे, अन्याय पूर्वक पाप कर्म करते हुए संसार में जीवन धारण किया, ऐसे व्यक्तियों का जीवन अभी कष्टमय होता है। अंतिम समय जब आता है श्वास तार कर उद्धार उस समय गला घर जाने लगता है और लंबी लंबी सांस चलती मृत्यु सैया में जुड़े हुए जीवन भर जैसे जैसे कर्म किया जो कुछ किया अंतिम समय आने पर वही चिंता करने लगते और बड़े दुखी होकर के भीतर होकर के पड़े हुए हैं चारों ओर बंधु बांधव भी असमर्थ है, अतंत है, जो बोल नहीं पाते, क्यों देख रहे हैं परंतु कुछ बाणी आप निकलते नहीं, कुछ बोल नहीं पाते, ऐसे समय में शरीर मन और वाणी से जो पाप कर्म किए हैं जब से तीनों दूर आ गए, आ करके उनके गले में छत्ता लगा करके उसके आत्मा को निकाल देते हैं। शरीर से निकाल तो समय बड़ा कष्ट होता है, जंतना में छटपटाते हुए और बड़े भयंकर विकराल स्वरूप जमदूतों को देख करके एकदम घबरा जाता है, डर जाता है। ऐसी स्थिति में जमदूत उसे पकड़ करके ले जाते हैं निरानों को हजार नियोजन पर, दो मुहूर्त तीन मुहूर्त की स्थिति समय में ही खींच ले जाते हैं जमदूत, और जम महाराज उसका दंड विधान करते अनेक प्रकार के नरक जाना है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा उन कष्टों को भोगते हुए दुखों को भोगते हुए जब कर्म की शुद्धि होती है फिर से इस संसार में आते, जब ये आते हैं तब अंत समय ये बादल में मिल जाते हैं पानी में, और वर्षा के कारण वर्षा के साथ में इस पानी में धरती में आ जाते हैं, लोग पानी पीते हैं प्राणी पानी पीते हैं तो उस पानी के साथ में आत्माएं शरीर के अंदर ले जाते हैं, और फिर प्रकृति पुरुष के संयोग होने पर मातृगर्भ में एक जीव का आधान होता है, वहां जाकर के ठीक होता है। इस तरह से 15 दिन एक महीना करते करते जब 4 महीना होता है उसके सारा अवयव निकल करके आता है, 7वां महीना होने पर उसको उस समय सेंस आता है, ज्ञान होता है, तो उस समय सैकड़ों जन्म का याद होता है कि अरे हमने कैसे कैसे कर्म किया, तो मातृगर्भ में रहता हुआ जीव छटपटाने लगता है, और कोई जीव जो पहले जन्म में कभी भगवान का स्मरण किया है, कोई साधु संतों की सेवा की है, तुलसी की सेवा की है, कोई सुकृति की है, ऐसी व्यक्तियों को भगवान का स्मरण होता है, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हर जोड़ करके स्तुति करते हैं कि प्रभु इस संसार में जा करके आपकी हम आराधना कर सकें, ऐसे हमें शक्ति दे, माया का हम संतों का संत अपने प्राप्त हो जाए, प्रभु से प्रार्थना करें, और जो जीव भगवान से विमुख है उनको भगवान का स्मरण नहीं छटपटाते हैं, मातृगर्भ में 8वें महीना से लेकर के 10 महीना तक मातृगर्भ में प्रकृति वायु अपान वायु के द्वारा धक्का प्राप्त हो करके वही जब होता है संसार में जन्म हो जाता है, जन्म होने के साथ में होने लगता है जो मैं इसका स्मरण कर सब भूल गया, और धीरे धीरे इस माया में आसक्त हो जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है पुस्तक में कि जन्म का जन्म ही स्नेह से भूलिया संसार लाइन लोग और जमीन जगह भी माता पिता के स्नेह प्यार में हार कर देगी भूल जाते, पूर्व स्मरण पहले का जो स्मरण था वो सब धीरे धीरे होते चले, जब तक बोलने की क्षमता आए बात करती आए और बोलने सीखने लगे तब तक वो धीरे धीरे पीछे का सब भूलते चले, और संसार में मन लगाया ध्यान लगाया संसार में आदिष्ट हुए सामने सामने जो कुछ वस्तु आया जैसे जैसे आया और उसी में आदत तो होते चले। इसी प्रकार जब असत प्रसंग में दूसरों के संग में असत प्रसंग में चला गया तो फिर से अनंत काल के लिए नरक जाना का भोग करते उससे यही। इसलिए हे माता इस कर्ममय संसार जो है इस कर्म की गति जौन लोग और चौंक लोग अभी से अभी अभी पुण्य करें तो सर्वलोक तक पहुंच सकते, परंतु पुण्य से समाप्त होने पर ठीक इसी धरती में आना पड़ेगा, इस कर्म के द्वारा कभी संसार से निकल नहीं पाता। अतः हे माता एक मात्र भक्ति योग के द्वारा जो परमपुरुष भगवान की आराधना करते हैं तो उनकी आराधना करते हुए देव निकल जाते हैं और उनके चरणों के कारण उनकी भक्ति प्रेम को लाभ करते हैं। जो लोग दूसरे दूसरे देवी देवताओं की उपासना में इधर उधर में नहीं आते हैं उनकी आराधना से कुछ भी नहीं हो पाता केवल संसार के फल को लाभ करते हैं, इसलिए संसार से उद्धार नहीं हो पाते। भगवान कपिल देव ने कहा हे मानव यथा करोड़ मूल ऐसे चलेगा त्रिपन से तत्संग भूयो अवतार था। प्राणों का हारा के जब हेन्द्रियाम तथैव सर्वार अनान अच्छे पेड़ के जड़ में पानी डालना पड़ता है। जड़ में पानी डालते थे डालों में पत्तों में सब भरा हो जाता है, सब में पानी पहुंच जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं क्या है कि हम पेड़ के जड़ में भी पानी डाले और पत्तों को भी धुलाई करते सफाई करते उसमें भी पानी डालते, भले ही डाले वो डालने से चलेगा कोई बात नहीं। परंतु भोजन प्राणों को हरत के जब इंद्रिया भोजन कहां देंगे, भोजन तो सब शरीर में सब जगह थोड़ा थोड़ा करके बांधा नहीं जाएगा, वह केवल मुंह में मुंह में ही दिया जाता है। मुंह में भोजन देने से समस्त प्राण सचेत होता है, समस्त इंद्रिया सचेत हो जाती है, नाक में कान में सिर पर हाथ में पैर में सब जगह नहीं बना जाएगा। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, उनकी आराधना करने पर सबकी आराधना हो जाती है। इसलिए हे भागवत एक वैकल्पिक रूप से एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की आराधना हो, उनकी भक्ति की जाए, यही जीवन का एकमात्र कार्य। इस प्रकार भगवान सबसे माता देवी की कहते हुए हम सबके लिए इतना सुंदर उपदेश किया है जो भक्ति योग के विषय में वर्णन किया है। इस प्रकार माता देवी की भक्ति करते भी भगवान में चित्त लगा आविष्ट हो गए और भगवती जी को प्राप्त किया है। तो हमें इस प्रकार भक्ति योग में ही प्रवेश करना है। मैं एक कहते हुए अपना
आप लोग इसको परम सत्य मानिए और ऐसे ही आचरण करने की चिंता करें। ये मत समझिए कि मृत्यु के समय में जम के जूटाते हैं, ये झूठ बात है, परम सत्य बात है। भगवान की कृपा से आप लोगों को याद नहीं रहा पहले जन्म की, या जन्म में जो कष्ट होता है आपको याद नहीं रहती, वो तो जाति पर भक्ति से उनको याद थी, हम लोग भूल जाते हैं। किंतु यह परम सत्य है, इसलिए इनको झूठी बात मन करके और इसकी अवहेला मत भगवान का भजन करें। यह विषय बहुत गंभीर था, जीवों का क्या कर्तव्य है उसको सहज सहज उन्होंने बताया, किंतु उसको ध्यान करना जरा गंभीर बात है। तो आपका दिमाग थक गया होगा, इसे कीर्तन करो तो मेरे तो वृद्ध जय जय राधा मन हरि ओम। यहाँ पर बतलाया सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को ये उपदेश देने लगे भागवत की कथा कहने लगे, जिसको हमारे ब्रह्मचारी ने आप लोगों को देवभूति का और कपिल कपिल माता कपिल देव और देवभूति माता का संवाद है। ये सुखदेव गोस्वामी जी के कौन थे, कैसे ये श्रीमद्भागवत का प्रकाश हुआ, थोड़ा सा इसके पीछे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। श्री आशुक श्री शुक षष्ठी विभक्ति में श्री शब्द का श्रिया होता है, श्रिया माने श्री के द्वार श्री के, अतः श्रीमती राधिका जी स्त्री हैं, समस्त लक्ष्मियों की लक्ष्मी हैं, उनका सुख। ये सुखदेव गोस्वामी केवल सोते ही नहीं है, उनके बड़े प्यारे श्रीमती जी सुख को सुख अपने सुख को अपने हाथों में बैठा करती और उसे दाना चुंगाती, उसे दूध और चावल अन्न उसे खिलाती और अनार के बीजों को उनको खिलाती और उसे कहती बोलो तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ठीक राधा जी के स्वरों में सुबह उन्हीं का अनुकरण करता हुआ उन्हीं के स्वर में वो बोलता कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बड़े प्यार से उनको संभालते। किंतु एक दिन जाति के स्वभाव से उनके हाथों से उड़कर कहीं दूर चला और पासी में बरसाना के पासी में नंदगांव है, दो अंगुल का अंतर है। ऐसे नंदगांव और बरसाना में करीब करीब डेढ़ दो मिल की दूरी हो, किंतु दोनों की सीमा जुड़ी हुई है। पासी में श्रीकृष्ण मधुमंडल के साथ में एक कुंज में, समान कुंज में बैठे थे। वह चुप पक्षी उनके राधा जी के हाथों से उड़ करके और वहां पर पहुंचा और समान की एक सघन छाया में बैठकर वो इसी प्रकार से कहा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण ने देखा कि राधा जी कहां से ये बोल रही, कहां है प्रिया जी, मेरी प्रिया जी कहां है, देखने लगी, देखा जी कभी। फिर उन्होंने देखा एक सुख पक्षी सघन हरियाली में पेड़ों की छाया पत्थरों में उसकी पास हुआ और बड़े दुख के साथ में कर रहा है, वो कह रहा है कृष्ण कृष्ण और साथ ही साथ में ये भी कहने लगा, ओ मैं दुर्भागा जाति से चंचल, ये प्रिया जी हमें अपने बाएं हाथे पर रखकर